ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
உபாதி கா பரித்யாக ஹோகா தப் ந, ஜப் தக் உபாதி பனி ரஹேகி தோ ஹம் யஹி சம்ஜேங்கே கி மே தோ ப்ரஹ்ம ஸே அலக் ஹூ, ப்ரஹ்ம சர்வஜ்ஞ ஹை ஔர் மே அல்பஜ்ஞ ஹூ, யஹி ஆஜ் தக் மான் ரஹே ஹை. தோ வோ உபாதி கா நிர்மோக் கர்னே கே லியே யே மந்த்ர ஹை. இஸ் மந்த்ர மே யே கஹா கயா ஹை. இஸ்லிய சப்சே பஹலே கஹா கி அதஹ பூர்ணம். அதஹ யானி கி யே ஜோ நிருபாதிக் ப்ரஹ்ம ஹை வோ பூர்ணம் ஹை. இஸ்கா அபி ஆப்கோ சக்ஷுராதி இந்திரியோ ஸே ஜிஸ்கோ ஆப் தேக் நஹீ சக்தே ஹை வோ ப்ரஹ்ம. ஔர் வோ ப்ரஹ்ம சக்ஷுராதி இந்திரியோ கா விஷய ஹே ஹி நஹீ. இஸ்லிய யஹா பரோக்ஷ கஹா. ஔர் பரோக்ஷ ஹோனே ஸே அதஹ ஷப்த கா பிரயோக் யஹா பர் கியா. ஐஸா ஜோ அதஹ யானி பரோக்ஷ ப்ரஹ்ம ஹை வோ பூர்ணம் ஹை, வோ அதுரா நஹீ ஹை. பரோக்ஷ கால் உன்கி லியே பி ஹோதா ஹை ஜோ பஹுத் பஹலே ஹோ கயே. உஸ்கே லியே ஜோ ஹை பரோக்ஷ லிட் லகார் கா பிரயோக் ஹோதா ஹை. அப் யஹா பர் யே ஜோ ப்ரஹ்ம ஹை வோ கிஸி கோ பி சக்ஷுராதி இந்திரியோ ஸே நஹீ திக்தா ஹை, ஔர் பஹலே தேக்கா பி நஹீ, ஔர் ஆகே சம்பாவனா பி நஹீ ஹை. இஸ்லியே பரோக்ஷ அர்த்த மே இஸ்கா பிரயோக் கியா அதஸ் கா. ஔர் யே ஹை பி சக்ஷுராதி இந்திரியோ கா யே விஷய நஹீ ஹை. இஸ்கே லியே ஜ்ஞான சக்ஷு சாஹியே. யஹி ஜ்ஞான ஹை இஸ்மே ஜோ பதாயா ஜா ரஹா ஹை, வஹி ஜ்ஞான. ஔர் வோ ஜ்ஞான ரூபே சக்ஷு ஸே வோ பரமாத்மா கா தர்ஷன் சம்பவ ஹை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண நே 15வே அத்யாய மே கஹா, உத்க்ராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்சானம் வா குணான்விதம் விமுடஹா நானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஜ்ஞான சக்ஷுஷஹ. மூட நீ தேக் சக்தா ஹை. கோன் தேக் சக்தா ஹை தோ கா பஷ்யந்தி ஜ்ஞான சக்ஷுஷஹ. ஜிஸ்கே பாஸ் ஜ்ஞான சக்ஷு ஹை வோ தேக் சக்தா ஹை. ஜ்ஞான சக்ஷு கியா கோய் அலக் ஸே மில்தி ஹோகி கியா? தோ நஹீ. யே ஜோ மந்த்ர கா விசார், இஸ் மந்த்ர மே ஜ ஜான ஹை வோ ஜான ரூபி சக்ஷு யதி ஜப் ஹம் பஹன் லெங்கே தோ ஹம்கோ பரமாத்மா கா தர்ஷன் ஹோகா. ஔர் அன்யத்ர கஹி நஹீ, ஹமாரே ஹீ அந்தர் அபேத ரூப் ஸே ப்ரஹ்மாத்ம ஏகத்வ ரூப் ஸே ஹோகா, ப்ரஹ்ம அனுபவ ஹோகா. இஸ்லிய தேக்கே உத்க்ரமண கர் ரஹே ஜப் ஏக் ஷரீர் சோ யே ஷரீர் சோட் கர் கே ஜீவாத்மா கா உத்க்ரமண ஹோதா ஹை தப் வோ திக்தா கஹான் ஸே நிக்லா கிஸ் ஜகஹ ஸே. அப் தேக் சக்தே முமூர்ஷு வியக்தி கே பாஸ் ஆப் கடே ஹை, ஔர் ஜைஸே உன்கி மிருத்யு ஹோ கயி தோ நிக்லதே ஹுயே ஆத்மா கோ கோயி தேக் நஹீ சக்தா ஹை. உத்க்ரமந்தம் நானு பஷ்யந்தி விமுடஹா. உத்க்ராமந்தம் ஆத்மானம் விமுடா நானு பஷ்யந்தி, விமுட நீ தேக் சக்தா ஹே. ٹھیک ہے உத்க்ரமண கி பாத் சோடிய, உத்க்ரமண தோ ஜப் ஆயேகா தப் கி பாத் ஹை, லேக்கின் இஸ் சமய ஸ்திதம் அபி ஹமாரே அந்தர் ஹை கே நீ ஹை, ஜீ ரஹே ஹை நா தோ ஹை, ஃபிர் பி கஹான் தேக் பாதே ஹை. ஸ்திதமபி விமூடஹ நானு பஷ்யந்தி, हमारे अंदर स्थित है, फिर भी हम उसको नहीं देख सकते हैं। क्यों? कि उससे मुख मोड़े हुए हैं। देखने के लिए हमारे पास ये इंद्रिया है और हम यही मान बैठे हुए हैं कि जो इंद्रियों से दिखे उनको हम माने, इंद्रियों से न दिखे तो उनको हम नहीं मानते हैं। और ये जो अभी जो स्थित आत्मा है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, अवांग मनस गोचर है, इसलिए हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। भुंजानम वा, भोग करते हुए भी उनको हम नहीं देख सकते। कौन भोग कर रहा है पूछो तो कोई पता नहीं है। कर रहा है इतना पता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषयों का उपभोग कर रहा है इतना पता है, किंतु वो कौन कर रहा है वो पता नहीं है। ठीक है चलो वो भी ना दिखे, गुणान्वितम तो दिखे, गुण के साथ अन्वित जुड़ गया हुआ, गुण से अभिप्राय है त्रिगुणात्मक, ये जो देह उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, इसलिए तो हम अहम अहम रूप से बोलते हैं किंतु देह के साथ संपृक्त होकर के बोलते हैं। स्पष्ट रूप से उनका अलग से देह से भिन्न रूप से उनकी प्रतीति नहीं हो रही है। क्यों? भगवान ने उत्तर दिया विमूढ़ होने के कारण। अब तो क्या करना होगा? ज्ञान चक्षु को धारण करना होगा, यही ज्ञान चक्षु, इस मंत्र का हम विचार कर रहे हैं, ये क्या है? यही ज्ञान चक्षु है। जैसे समझ लो किसी को बिना चश्मे नहीं दिखता है, लिखा हुआ होने से भी चश्मा उतार दो तो नहीं दिखता, नहीं पढ़ पाता है वो। अब जैसे ही चश्मा को चढ़ाते हैं तो कहते हैं बिल्कुल मेरे को स्पष्ट दिख रहा है। दिखने में चश्मा माध्यम हुआ कि नहीं? वैसे ही अज्ञान अवस्था में, विमूढ़ अवस्था में आत्मा जो है स्पष्ट दिखता जरूर है, सामान्य ज्ञान तो हो ही रहा है, किंतु विशेष ज्ञान के लिए इसका विचार है। सामान्य ज्ञान तो सबको है ही है। सूत्र भाष्य में प्रश्न उठाया भगवान भाष्यकार ने कि ब्रह्म की जिज्ञासा तो बताई, ठीक है, किंतु वो ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? यदि प्रसिद्ध है, शंकराचार्य कहते हैं प्रसिद्ध है तब भी जिज्ञासा संभव नहीं है। अब जो चीज प्रसिद्ध है उनकी किसी को जिज्ञासा होगी? नहीं होगी। और जो रोज बार बार दिख रही है, सामने आ रही है, तो उसके विषय में हमको जिज्ञासा नहीं होगी, प्रसिद्ध है। और यदि अप्रसिद्ध है ऐसा कहेंगे तो कहते जो वस्तु अप्रसिद्ध ही है उनके विषय में भी जिज्ञासा नहीं होगी। जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, पाया नहीं, उसके विषय में किसी को जिज्ञासा होगी? नहीं होगी, अप्रसिद्ध। तो दोनों तरफ से ब्रह्म अजिज्ञास्य हुआ। भगवान भाष्यकार ने लिखा कि सामान्य ज्ञान है, सामान्य रूप से वो प्रसिद्ध है, और जिज्ञासा विशेष प्रति। सामान्य ज्ञान सबको है, विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति है, ऐसा लिखा। विशेष के प्रति संदेह है। अब तो कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञान से संसार की निवृत्ति हो हो जाती है, सामान्य ज्ञान तो सबको है तो क्यों नहीं हो रही है? सामान्य ज्ञान तो स्वीकार किया, सामान्य ज्ञान सबको है, तो फिर कहा गया कि सामान्य ज्ञान संसार का विरोधी नहीं है, किंतु जो विशेष ज्ञान है वो संसार का विरोधी है। विशेष ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए विशेष के विशेषण प्रति विप्रतिपत्ति है, विशेष के प्रति विप्रतिपत्ति है, इसलिए उनकी जिज्ञासा करनी है। इसलिए तब जब वेदांत का विचार करेंगे तभी विशेष ज्ञान संभव है, और वेदांत का विचार यही जो ये जो मंत्र है उस मंत्र में संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया है। इसलिए कहा कि अदह पूर्णम, अदह यानी कि निरुपाधिकम, अथवा ये कीजिए जो परोक्षम, अथवा ये लीजिए तत्पदार्थ रूपम ब्रह्म। तत्पदार्थ, तत्पद का जो लक्ष्य वो पूर्णम यानी पूर्ण है। पूर्ण यानी कैसा? तो कहा आकाशवद व्यापी, आकाश के समान जो व्यापक है, जो व्यापक है वो पूर्ण है। और दृष्टांत बताया आकाश का, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम। जैसे आकाश है ना, वो सर्वगत है कि नहीं, वैसे ब्रह्म भी आकाश के समान सर्वगत है। भला इस संसार में कोई जगह ऐसी होगी जहां पर आकाश न हो? नहीं हो सकता है, क्योंकि वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सब आकाश से उत्पन्न हुए हैं ना, आकाश से वायु, तो आकाश वायु से अधिक देश में रहेगा ना, जो कार्य है वो न्यून देश में रहेगा। तो आकाश का वायु में अंतर्भाव हो जाता है, वायु न्यून देश में रहता है, और वायु से तेज उत्पन्न हुआ तो वो तेज वायु से कम देश में रहेगा, और तेज से जल उत्पन्न हुआ तो तेज है वो अधिक देश में रहेगा और जल न्यून देश में रहेगा। और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई तो जल है वो अधिक देश में और पृथ्वी न्यून देश में। और ये पांचों भूतों का ही जो है पंचीकरण, ये सारा संसार है। तो भला बताइए, जहां पृथ्वी होगी उसमें जल व्याप्त रहेगा, और जल है वो पृथ्वी जल में व्याप्त है, जल तेज में, तेज वायु में, और वायु आकाश में। इसलिए आकाश है वो सब जगह है, आकाश के बिना कोई परमाणु भी खाली नहीं है। और आकाश किससे उत्पन्न हुआ बताओ? आत्मा से। एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। तो आकाश भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्रह्म जो है वो आकाश से भी व्यापक है। आकाश तो अभी जहां ब्रह्म है वहां न रहे, क्योंकि ये जो संपूर्ण संसार है पादोश्च सर्वाभूतानि, ब्रह्म के एक पाद में है, इसलिए सारे संसार में आकार ये ब्रह्म है वो व्यापक है। आकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त है वैसे ये ब्रह्म भी आकाश के समान व्यापी है। अथवा ऐसा कीजिए कि व्यापी न समझ में आए तो ऐसा सोचिए निरंतर है, जो निर जो पूर्ण का अर्थ है निरंतर, और निरंतर का अर्थ है जो नित्य है। निरंतर कैसे देखो, जो सभी देश में है, सभी अवस्था में है, सभी काल में है, उसको कहते हैं निरंतर या पूर्ण। देखिए ये जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अनुभव जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्था में है, और भूतकाल में, भविष्यकाल में और वर्तमान काल में, तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में, तीनों शरीरों में जो निरंतर है, कभी उनका अभाव नहीं होता है। इसलिए पूर्ण का अर्थ हुआ निरंतर, आकाश के समान व्यापक, उसको कहते हैं पूर्ण। तो अभिप्राय हुआ पूर्ण मदह का अर्थ हुआ कि जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो आकाश के समान पूर्ण है और निरंतर है, उनका कहीं भी अभाव नहीं है। जो तीनों कालों में रहते हैं ना, उनको ही सज्जनों सत कहते हैं, और जो तीनों कालों में न रहे उनको असत कहते हैं। सत वो है, पूर्ण वो है जिनका कहीं भी अभाव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंतः स्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। भी असत का कहीं भाव नहीं और सत का कहीं अभाव नहीं। इसलिए यहां पर ये जिसको कह रहे जो निरुपाधिक ब्रह्म है, जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, वो सर्वत्र है, सभी पदार्थ के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है। चाहे कोई भी संसार का पदार्थ उठाइए, उसके अंदर इस परमात्मा की सद्रूप से प्रतीति होगी, सद्रूप से वो सर्वत्र विद्यमान है, वो दिखता नहीं है। और दिखता नहीं है वो इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि वो प्रत्यक्ष होते हुए भी अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं होता, इसलिए कहते हैं नहीं दिखता है। अब यदि हार वेड मीटी को बताया जाए, जैसे ऐसा खड़ा करके कहा कि ये क्या है, तो कहेंगे चावी है ऐसा बोलेंगे, लोहा है ऐसा नहीं बोलेंगे। हार को ऐसे दिखाया जाए तो हम हार है ऐसा कहेंगे, सोना है ऐसा नहीं कहेंगे, और चक्षु का संयोग तो सोने के साथ ही हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? चक्षु का संयोग सोने के साथ हो रहा है, किंतु संस्कार हार का है, नाम और रूप का संस्कार है। इसलिए अस्थिभाति प्रिय का अनुभव होते हुए भी हम उसको नहीं कहते, नाम और रूप को यथार्थ मान करके चल रहे, इसलिए नाम और रूप को बता रहे, किंतु अस्थिभाति प्रिय जो सर्वत्र है उस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। देखते हुए भी देखो, आप लोग ने जो कपड़े पहन रखे हैं तो कहेंगे बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, कहे कि कपड़ा पहन रखा है या सूत पहन रखा है तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे कपड़े पहन रखे हैं। अब कपड़े में से सूत को निकाल दो तो कपड़ा नाम का कोई पदार्थ मिलेगा नहीं। जो सूत है उन्होंने कपड़ा का रूप धारण कर रखा है। इसी बात को ही वेदांत में कहा और यहां यही कह रहे, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिकेत्येव सत्यम। ये जो कपड़ा है वो केवल वाचारंभणम है। वाचारंभणम कहते हैं, भाष्यकार अर्थ करते हैं वाद आलंबन मात्र, जो केवल वाणी के द्वारा बताया जा सके किंतु सिद्ध न किया जा सके उसको कहते हैं वाचारंभणम। आप कपड़े को, ये कपड़ा ऐसा बोल सकते हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते, और सत वो है जिसको आप सिद्ध कर सके, कपड़े को सिद्ध नहीं कर सके। हम पूछे कि यहां कपड़ा कहां है, तो कह रहा ये रहा, तो उसमें से एक एक सूत को निकालते चले जाए तो कहेंगे अरे ये तो सूत है, कपड़ा तो कहीं भी नहीं है, नहीं मिलेगा। जो सूत है उन्होंने कपड़े का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही जो सद रूप ब्रह्म है उन्होंने ये संसार का रूप धारण कर लिया है, वो हमको दिखता हुआ भी नहीं दिखता है। जैसे सूत ही दिख रहा है कपड़ा पहनते समय, जब कपड़ा हम पहनते हैं तो वो सूत ही है, किंतु हम सूत नहीं कहते कपड़ा कहते हैं। इसलिए यहां जो है ये सूत नहीं दिख रहा है, कपड़ा ही दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सूत है, तंतु है, वो अप्रत्यक्ष है और कपड़ा प्रत्यक्ष है, ऐसा प्रयोग होता है ना। ठीक ऐसे ही यहां पर चक्षु का संयोग सर्वत्र ब्रह्म के ही साथ हो रहा है, अपरोक्ष एकमात्र ब्रह्म ही है, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर। इस श्रुति यही बता रही है कि अपरोक्ष तो ब्रह्म का ही हो रहा है, किंतु जैसे तंतु का प्रत्यक्ष होते हुए भी हम कपड़ा बोलते हैं, ऐसे ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष होते हुए भी हम जगत बोलते हैं। इसलिए यहां उस ब्रह्म को पूर्ण बताने के लिए अदस शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए कहा अदह पूर्णम। और आगे चले दूसरा पद पूर्णम इदम, पूर्णम इदम, इसको आप तोड़ेंगे तो उसमें से भी दो शब्द निकलेंगे, पूर्णम और इदम। अब इसको वाक्य क्रम में बोलने के लिए इदम शब्द को पहले बोलिए तो इदम पूर्णम ऐसा होगा, जो इदम है वो भी पूर्ण है। अब इदम से किसको लेंगे, इदम से ये जो सारा संसार है, नाम रूपादि से जो विशिष्ट है, त्वम पदार्थ का, त्वम पद का जो, त्वम पदार्थ है, त्वम पद का जो लक्ष्य है, व्यवहारापन्नम त्वम पदार्थ रूपम, वो भी पूर्ण है। इदम पूर्णम अदह पूर्णम, इदम कारास्पद नाम रूप उपाधि से विशिष्ट, तो ये जो तंतु है या अथवा मिट्टी लीजिए, ये जो मिट्टी है उन्होंने नाम और रूप को धारण कर लिया, तो हम कहते हैं ये घड़ा है, तो घड़ा है और कंबु ग्रीवादिमान उनका रूप है, पृथ्वी नोदराकार उनका जो रूप है वो किसका, मिट्टी का ही है। तो इदम शब्द से हम घड़े को कहेंगे, मिट्टी को नहीं कहते। तो जैसे वो घड़ा है वो प्रत्यक्ष है, वो व्यवहारापन्न है। देखिए आप व्यवहारापन्न का अर्थ है आप मिट्टी के अंदर पानी नहीं भर सकते, किंतु पानी किसमें भरेंगे, जब वो घड़ा आपको घड़े के रूप में वो मिट्टी हो जाए तभी उसमें पानी भर सकते हैं। इसलिए उसके अंदर कुछ वैशिष्ट्य जरूर आया, फर्क जरूर है, किंतु मिट्टी में पानी नहीं भर सकते, घड़े में भर सकते हैं। इसी को लेकर भेदाभेदवादी ने आकार को भी सत्य माना है, वो कहते हैं कि यदि मिट्टी ही वस्तु सत होती तो फिर मिट्टी में पानी भर जाना चाहिए, किंतु मिट्टी में पानी नहीं है, पानी तो घड़े में ही भर सकते हैं, इसलिए कुछ फर्क तो जरूर है कहते हैं। ठीक है, हमारे यहां उनका निराकरण कर दिया है। निराकरण यही कि जो घड़ा है जिसमें पानी भर सकते हैं वो व्यवहारापन्न है, वाद आलंबन मात्र है, किंतु वो आदि और अंत में नहीं रहता है। वो जो आकार है वो आदि और अंत में नहीं रहता है, इसलिए वो मिथ्या है। स्वीकार किया जरूर, कुछ का स्वीकार तो किया, किंतु वो मिथ्या रूप से है जरूर, किंतु वो है क्या? मिथ्या है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने इस जगत को मिथ्या कहा। असत और मिथ्या में थोड़ा फर्क किया है। असत जैसे शश श्रृंग, खरगोश के जो श्रृंग है वो कैसे असत है, वो दिखते ही नहीं। और संसार ऐसा है, दिखता है, इसलिए खरगोश के श्रृंग के जैसा ये संसार नहीं है, किंतु कुछ है ऐसा हम मानते, इसलिए मिथ्या। और मिथ्या का लक्षण किया जो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, सद असत दोनों मिक्स भी नहीं है, ऐसा जो है उनको कहते हैं मिथ्या। इसलिए मिथ्या ये जो संसार नाम रूपात्मक, किंतु नाम और रूप से कुछ वैशिष्ट्य आया, व्यवहारापन्न हुआ, व्यवहार के योग्य हुआ, ऐसा जो ब्रह्म है वो भी पूर्ण है। लेकिन पूर्ण है ये तो कहा, किंतु व्यवहार कोटि में पूर्ण नहीं उनको कहा, कारण दृष्टि से वो पूर्ण है। सोपाधिक ब्रह्म भी पूर्ण है, किंतु निरुपाधि आत्म रूप से वो पूर्ण है। जैसे मिट्टी है वो पूर्ण है, और घड़ा भी पूर्ण है, किंतु घड़ा पूर्ण वो कहेंगे कि मिट्टी के रूप में पूर्ण है, घड़ा घड़ा के रूप में नहीं, क्योंकि वो जो घड़ा है आकार है वो टूट फूट जाता है, इसलिए उसको पूर्ण नहीं कह सकते, किंतु मिट्टी का कभी नाश नहीं होता है, इसलिए मृतिका के रूप में घड़ा पूर्ण है। घड़े के अंदर जो मृतिका है वो तो है पूर्ण है, किंतु वो मृतिका से जो घड़ा बना है वो भी पूर्ण है, उस कहेंगे तब ये समझना होगा कि घड़ा पूर्ण है किंतु मृतिका के रूप में ही पूर्ण है। ऐसे ही समझना। क्यों ऐसा? तो उसका हेतु बताया, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इस हेतु बताया उसका। भगवान की कृपा होगी तो विचार करेंगे।